हमें संपूर्णता के महान लक्ष्य को प्राप्त करना है। निसंदेह संपूर्ण बनना एक बहुत ऊंची मंजिल है, परंतु हमें तो इस मंजिल पर चढ़ना है, क्योंकि जब हम इस धरा पर आए थे तो संपूर्ण थे और अब पुनः हमें मुक्तिधाम को जाना है। वहीं जाना है जहां से आए थे, तो संपूर्ण बनकर ही जाना है। संपूर्णता का सीधा सा अर्थ है फुल हो जाना, आत्मा को भरपूर कर देना। किसमें? सर्व शक्तियों में। संपूर्ण ज्ञान के खजाने से, सभी दैवी गुणों से, संपूर्ण पवित्रता से, कुछ भी कमी न रह जाए, सारे अवगुण नष्ट हो जाएं, आत्मा व्यर्थ से मुक्त होकर संपूर्ण शक्तिशाली हो जाए। तो इसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी चीज हमें बताई है, सब कुछ मुझ पर बलिहार करो। एक बहुत सुंदर महावाक्य बाबा का आप सभी ने सुना होगा, बाप तुम्हारी बलिहारी तब ही स्वीकार करता है जब तुम संपूर्ण पावन बन जाते हो। बहुत गहराई है। सब कुछ समर्पित कर देने से संपूर्णता आ जाएगी, हम व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, हमारे सारे बोझ समाप्त हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी समर्पण भाव का बहुत ज्यादा वर्णन है और महत्व है। कर्म करो प्रभु अर्पित कर दो, श्री कृष्ण समर्पणम कर दो। भक्ति में रोज गीत गाते रहे, आरती में तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सभी गाते थे। परंतु मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने तन मन धन सब तेरा कहते थे, और जब घर वापस आ जाते थे तो तन मन धन सब मेरा वापस ले लेते थे। तो समर्पित भाव हुआ नहीं, बस गीत में लिखने वाले ने लिख दिया और भक्तगण उसका गायन करके प्रसन्न होते रहे। लेकिन ये समय आया है जब भगवान स्वयं इस धरा पर अवतरित हुए। जो ब्रह्मवत्स हैं वो इस बात से पूरी तरह अवगत हैं, उन्हें संपूर्ण रूप से जानकारी है कि कैसे निराकार परमात्मा, जिसको लोग पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, जो अव्यक्त है निराकार है, वो इस धरा पर आकर अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं, इस संसार को स्वर्ग में बदलने के लिए, हम सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए, हमें संपूर्ण बनाकर घर वापस ले जाने के लिए। उनका एक सुंदर दिव्य और विशाल कार्य गुप्त रूप से इस धरा पर चल रहा है। हम सब उनके बच्चे उसके इस महान कार्य में मदद कर रहे हैं। तो वो आह्वान करते हैं, हमें याद दिलाते हैं, बच्चे तुमने भक्ति में मुझे कहा था कि हे प्रभु, जब तुम आओगे हम अपना सब कुछ तुम पर बलिहार करेंगे, अब अपना वायदा निभाओ। कई सोचते हैं क्या भगवान को हमारे धन की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं केवल धन सब कुछ अर्पित कर देना यही समर्पणता है, परंतु नहीं। समर्पणता तो बहुत गहरी चीज है जिसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं, परंतु जब भगवान हमें याद दिलाते हैं कि सब कुछ मुझ पर अर्पित कर दो, तो ये महावाक्य सुनकर जिसको याद आ जाता है कि सचमुच भक्ति में हमने भगवान से वायदा किया था, वो पुनः संपूर्ण समर्पित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिन्होंने ये वायदे नहीं किए थे, उनके मन में समर्पणता की भावना उठती नहीं है। ये गुह्य रहस्य है समर्पणता के पीछे। आप जानते हैं बाबा के इस महान यज्ञ में कई हजार भाई बहन अपना सर्वस्व न्योछावर कर चुके हैं। वो बाबा के इस कार्य में संपूर्ण रूप से अपने जीवन को बलि चढ़ा चुके हैं, विकारों की बलि चढ़ा चुके हैं और उसके कार्य में सहयोगी बन गए हैं। निसंदेह शिव को अपने कार्य करने के लिए शक्तियों की जरूरत पड़ती है। निराकार अपनी संकल्प शक्ति से, सर्वशक्तिवान अपनी शक्तियों के बल से संसार को नहीं बदलता, वो तो बदलता है ज्ञान देकर, सभी मनुष्यों को पावन बनाकर, उन्हें उनकी मूल स्थिति पर ले जाकर। इसी के द्वारा प्रकृति भी तमो प्रधान से स्वतो प्रधान हो जाती है। तो पूछें अपने से, क्या याद आया भगवान से किया हुआ वायदा, या वो पूर्व जन्मों का है, कईयों ने इस जन्म में भी किया होगा। तो तैयार हो जाओ अपना सब कुछ उसके हवाले कर देने का, ये जानते हुए कि उसको हमारे धन की आवश्यकता नहीं। हम तो केवल सच्चे दिल से कहते हैं, हे बाबा, हे शिव बाबा, हे प्राणेश्वर परम पिता, मेरा सब कुछ तेरा। तो वो भी ऊपर से ऐसे ही कहता है, प्यारे बच्चों, मेरा सब कुछ तेरा। कितना सस्ता सौदा है, जिसको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं, वो हमसे मदद मांग रहा है। जरा अपने भाग्य पर मुस्कुराओ तो सही। कितना श्रेष्ठ भाग्य है उन महानात्माओं का जो भगवान के कार्य में सहयोग दे रहे हैं, चाहे वो तन का सहयोग हो, योग का सहयोग हो, धन का सहयोग हो, योग्यताओं का सहयोग हो। कितना श्रेष्ठ भाग्य मिलेगा उन्हें। विचार करें, एक बार भगवान इस धरा पर आते हैं, हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष होते हैं, संसार के करोड़ों लोग तो उसे ढूंढ रहे हैं, उसे मिलने की प्यास उनके चित्त में समाई हुई है, इंतजार हो रहा है। भक्ति तपस्या कर रहे हैं कुछ लोग, हिमालय की गुफाओं में भूखे नंगे रहकर, कष्ट सहकर परमात्म मिलन की राह देख रहे हैं, परंतु इन सब से उसका मिलन नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में अपना दिव्य विश्व रूप दिखाकर, विराट रूप दिखाकर, क्या भगवान ने नहीं कहा, हे अर्जुन, अब से पहले तेरे सिवाय यज्ञ से, तप से, दान से, पुण्य से, भक्ति से किसी ने भी मेरा ये स्वरूप नहीं देखा है। फिर भी विदुषक गण समझ नहीं पाते कि ये सब चीजें, शरीर को कष्ट देना, ये तो केवल शरीर का, कर्मेंद्रियों का संयम है, इससे भला परमात्म मिलन कैसे होगा। परमात्मा जो हमारा परम पिता है, क्या वो मिलने के लिए अपने बच्चों को कष्ट देना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। वो प्यार का सागर, वो रहम दिल, वो सबके लिए शुभ भावनाएं, कल्याण की भावनाएं रखने वाला, सबका सबसे प्यारा परम पिता क्या कष्ट पहुंचाएगा? नहीं, वो तो सबके कष्ट हरने वाला है। तो वो हमारे समक्ष इस समय प्रत्यक्ष हुआ है। जो बुद्धिमान है वो अपना सर्वस्व उस पर समर्पित करके निश्चिंत हो गए हैं। हम सब कुछ उस पर समर्पित कर देते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। साकार में बाबा कहा करते थे, बाप बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं, जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी बाप पर फिर से अर्पित करके कार्य करते हैं वो सफल होते हैं, वो हल्के रहते हैं। और जिम्मेदारी देने के बाद जिनके अंदर मैपन आ जाता है वो भारी भी रहते हैं, सफल भी कम होते हैं और योगयुक्त स्थिति भी नहीं बना पाते हैं। सब कुछ प्रभु अर्पण कर दें। बाबा कहते हैं बैगर बन जाओ तो प्रिंस बन जाओगे। ये ऐसी सुंदर समर्पणता है जिसके बाद परमात्मा अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, अपना स्वर्ग हमें अर्पित कर देता है। बड़े सूक्ष्म महावाक्य हैं ये। जो बच्चा बाप पर समर्पित हो गया उसे सतयुग या त्रेता युग में कम से कम एक बार छोटी या बड़ी राजाई अवश्य मिलेगी, उसके सिर पर एक बार ताज अवश्य रखा जाएगा, चाहे उसने पुरुषार्थ किया हो या न किया हो, वो समर्पित हो गया ना। चाहे त्रेता के अंत में एक छोटी सी राजाई उसको मिले, मिलेगी अवश्य। देखिए भगवान जो प्यार और भावनाओं का भूखा है, हम अपने प्यार और भावनाओं को उस पर समर्पित करें। ऐसा मौका चारों युगों में भला कब मिलेगा कि भगवान सम्मुख उपस्थित हो और कह रहा हो बच्चे अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दो। और गहराई से विचार करें हमें सब कुछ में क्या क्या उसको समर्पित करना है। क्या गृहस्थ में रहकर भी समर्पित हो सकते हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि जो कुमार हैं कुमारियां हैं वही समर्पित हो सकते हैं। कई लोग समर्पित जीवन में सफल भी नहीं होते, कई लोग समर्पित होकर अलबेले हो जाते हैं, कई लोग समर्पित होकर अपनी समर्पणता वापस ले लेते हैं। आप सब ये जानते हैं समर्पणता का मार्ग निसंदेह बड़ा सूक्ष्म मार्ग है, तपस्या का मार्ग है। हम ये नहीं कहेंगे ये कष्टों का मार्ग है। यदि कोई इस मार्ग पर कष्ट अनुभव करता है तो ये उसके निगेटिव थिंकिंग का परिणाम है, ये उसकी कमजोर मानसिकता का परिणाम है। समर्पणता का मार्ग तो बहुत सरल है, सब कुछ तेरा। क्या क्या हम आठ नौ चीजें गिन लेते हैं, तन मन धन और बुद्धि, चार चीजें पहली हो गई। पांचवी चीज है समय, छठी चीज देह के सभी संबंधी, देह के साथ देह के संबंधी भी, सातवां कर्म जो निरंतर कर्म हम कर रहे हैं, आठवां कर्म का परिणाम, और नौवां ले लें मन के सारे बोझ टेंशन। इन सभी चीजों को हम समर्पित कर दें। अब हम इसकी सूक्ष्मता से चर्चा करेंगे। तन को समर्पित कर देना अर्थात मन से ये भावना रखना, हे शिव बाबा ये तन अब तेरा है, इस पर अब तेरा अधिकार है, अब इस तन का प्रयोग हम उसी तरह करेंगे जैसे तुम चाहोगे, अब इस तन पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं हो सकता। बहुत सूक्ष्म चीज है, पवित्रता आ जाएगी, किसी की भी इस तन पर अधीनता समाप्त हो जाएगी। फिर इस तन को हम यज्ञ सेवा में लगाएंगे। चाहे आप गृहस्थ में रहते हैं, अपने गृहस्थ को आप ईश्वरीय यज्ञ मान लें, तो जो कार्य आप वहां करेंगे वो यज्ञ सेवा होगी। आपको फुल नंबर मिलेंगे, चाहे आप शिव बाबा के द्वारा रचे हुए यज्ञ में कम सेवा करते हो, लेकिन यदि आप अपने घर को यज्ञ बना दें तो आपके घर में की जाने वाली सेवाएं कामकाज यज्ञ सेवा में काउंट हो जाएंगे। तो तन की समर्पणता से हम तन के भान से न्यारे हो जाएंगे। तन का जो लगाव है, तन में जो आसक्तियां हैं, तन में जो ममत्व है, बॉडी कॉन्शियसनेस जो बहुत हो गया है हमारे पास, इससे हम धीरे धीरे मुक्त होकर ऐसा धीरे हो जाएंगे। हमें प्रैक्टिस भी यही करनी चाहिए। तन हम बाबा को दे दिया, बच गई मैं निराकार चमकती हुई ज्योति आत्मा। बाबा ये तन तेरे हवाले, शरीर को बीमारियां भी आती हैं, तन को बाबा के हवाले रखें, बीमारियों में बहुत मदद मिल जाएगी। हाय मुझे ये क्या हो रहा है, ये कब ठीक होगा, ये शरीर तो मैंने बाबा को अर्पित कर दिया था फिर भी बीमार क्यों, इन संकल्पों की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बीमारी भिन्न भिन्न कारणों से जिसके जिम्मेदार हम हैं हमारे शरीर में आई है। बाबा को तन समर्पित कर देने से वो हमें जन्म जन्म के लिए सुंदर तन प्रदान करेंगे। मन की समर्पणता अति अति सूक्ष्म, मन में हम निरंतर विचार कर रहे हैं अपने व्यर्थ संकल्पों को समर्पित कर दें, और भी अच्छी बात, एक संकल्प कर लें कि हमें अपने मन में वही संकल्प करने हैं जो भगवान पर अर्पित करने लायक हों। बहुत शुद्ध संकल्प, बहुत कल्याणकारी संकल्प, हमें वही संकल्प करने हैं जो परमात्मा को प्रिय हों। तो मन तेरा, अब ये मन वो कुछ नहीं सोच सकता जो तुझे प्रिय न हो, जो तेरी आज्ञा के प्रतिकूल हो, जो तेरी श्रीमत के अनुसार न हो। ये है मन की समर्पणता। इससे मन बहुत हल्का हो जाएगा, मन व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। धन की समर्पणता, हम सब कहते आए धन भगवान ने हमें दिया है, उसकी कृपा से हमें धन मिला है। कुछ लोग इसमें विश्वास नहीं करते, कोई लोग कहते हमने कमाया है, भगवान देता तो सबको न दे देता। लेकिन जब उसकी शक्तियां हमारे साथ हो जाती हैं तो सचमुच उसकी कृपा दृष्टि, उसकी मदद से, उसके द्वारा दिए गए श्रेष्ठ भाग्य से जल्दी ही हमें धन की प्राप्ति हो जाती है। तो वो कहते हैं अब ये धन पाप कर्मों में नहीं लगाओ, अब ये धन केवल अपनी पेट पूजा में, अपने परिवार की पालना में ही नहीं खर्च करो, मेरे अर्थ भी खर्च करो। तो एक भावना रख ले मन में, मेरा ये सारा धन और सारी संपत्ति, चल अचल संपत्ति, सब तेरी। करें सभी संकल्प। हमें पता है वो हमारी ये संपत्ति लेगा नहीं, वो हमें वापस देगा कि अब इससे अपने परिवार की पालना करो और कुछ हिस्सा मेरे कार्य में भी लगाओ। लेकिन ये धन संपत्ति सब तेरी है, तो इसका प्रयोग हम तेरी आज्ञा के विरुद्ध नहीं कर सकते। उसकी श्रीमत हमें मुरलियों से प्राप्त है। हमें कहाँ धन लगाना चाहिए ये हमें मालूम होना चाहिए, विशेष रूप से उन कार्यों में नहीं जिससे पाप कर्म बनता हो। और अपने धन का कम से कम 10% तो ईश्वरीय कार्य में लगाना ही चाहिए। बहुत अच्छे अनुभव लोगों को हो रहे हैं, धन प्रभु अर्थ लगाने से धन में तेजी से वृद्धि हो रही है। कई गरीब बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं थोड़ा थोड़ा धन भी लगाने से। बाबा धन के पीछे प्यार और भावना को देखता है, इसलिए कहता है गरीब का एक रुपया और साहूकार के हजारों बराबर होते हैं। तो हम श्रेष्ठ भावनाओं से, बहुत प्यार से अपना थोड़ा भी धन ईश्वरीय कार्य में अवश्य लगाएं। ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है, ये कुछ मांग नहीं है। अगर शिव बाबा चाहे तो वो अरबों की संपत्ति एक साथ यज्ञ में दिला सकता है, पर उसे साहूकारों का पैसा नहीं चाहिए, उसे गरीबों का भाग्य बनाना है। इसलिए वो गरीबों के 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए ये स्वीकार करके उनका श्रेष्ठ भाग्य बना देता है। बुद्धि की समर्पणता एक बहुत सूक्ष्म चीज है। बुद्धि में अहम भरा हुआ है, मैंपन भरा हुआ है, पुराना विवेक भरा हुआ है, मैं राइट हूं ये भावनाएं भरी हुई हैं, इन सब को समर्पित कर देना। अब ईश्वरीय ज्ञान से सद विवेक और दिव्य विवेक बुद्धि में भर देना, ये बुद्धि की समर्पणता है कि सब ये बुद्धि भी तेरी, तूने मुझे दिव्य बुद्धि जो प्रदान की है अब मैं उसका जीवन में उपयोग करूंगा। देह के संबंधी आप अपने परिवार पर रोज एक बार दृष्टि डाला करें और ये संकल्प किया करें ये सब उसके हैं, ये सब आत्माएं हैं, संकल्प किया करें, ये संपत्ति, ये घर, ये परिवार, ये बच्चे, स्त्री, माँ बाप सब तेरे। इससे आपके परिवार का माहौल बहुत सुंदर हो जाएगा। एक बार भी आप ये अनुभव करें कि सब आत्माएं हैं और सब शिव बाबा के बच्चे हैं, तो बहुत अच्छी समर्पणता की हम प्रैक्टिस करेंगे और आगे चलें। हम कर्म करते हैं, कर्म समर्पित भाव से प्रारंभ करें, बहुत अच्छा अनुभव करें सभी। रोज एक बार अपने को ये भावना दे दें, मैं सारे कर्म शिव बाबा के लिए करूंगी, मेरे सारे कर्म यज्ञ प्रति होंगे। और जब कर्म पूर्ण हो, शाम को एक बार उन सभी को समर्पित कर दिया करें शिव बाबा पर। जो कुछ भी आज हुआ वो सब तुम पर अर्पित। तो कर्मों के प्रभाव से हम धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे, हमारी स्थिति बहुत निर्मल और निश्चल होती जाएगी, क्योंकि कर्म मनुष्य निरंतर कर रहा है। वो देखता है, बोलता है, सुनता है, हाथ और पैरों का प्रयोग करता है, इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा वो सतत कर्म में प्रवृत्त है, उसका प्रभाव मन पर पड़ रहा है, देह पर भी पड़ रहा है। यदि हम समर्पित भाव से कर्म करेंगे और कर्म करने के बाद भी सब कुछ समर्पित कर देंगे, तो हमारे कर्मों में निष्काम भाव आ जाएगा, बड़ी दिव्यता आ जाएगी और इसका हमारी स्थिति पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा। और आगे चलें, समय। हम अपने सारे समय को प्रभु के कार्य में अर्पित करें और भी सुख संवात हो गई। समय तो मनुष्य का न जाने कहां कहां जा रहा है, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ गपशप में, व्यर्थ चिंतन में उसके श्वास निष्फल जा रहे हैं। श्वास और समय, ये परमात्म अर्थ हो, चाहे उसकी याद में व्यतीत हो, चाहे उसके दिव्य कार्य में संपन्न हो, ये है समय की समर्पणता। संकल्प करें, मेरा संपूर्ण समय अब तुम्हारे लिए है, मेरा समय मेरे लिए नहीं। और आगे चलें, मन के बोझ। रोज रात को शिव बाबा के नाम एक पत्र लिख दिया करें आप, जो भी मन की टेंशन है और बोझ है वो उसको समर्पित कर दिया करें। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, ये सभी मन के बोझ, जिम्मेदारियों के बोझ, मन के तनाव तुम्हारे हवाले। और ऐसे ही गुह्य समर्पणता है कर्म के फल की। कर्म करने पर तो हमारा अधिकार है, लेकिन फल पर कभी कभी हमारा अधिकार नहीं होता। कभी कभी अच्छे कर्मों का फल भी खराब मिल जाता है, कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी कम सफलता प्राप्त होती है, रद्द भागदौड़ करने के बाद भी बहुत कम लाभ होता है, कर्म के बाद कहीं विजय होती है तो कहीं पराजय हो जाती है, कहीं निंदा होती है तो कहीं प्रशंसा होती है। ये जो कर्म का परिणाम हमें प्राप्त होता है, इसको भी परमात्मा पर अर्पित करने लगे। मैंने कर्म किया इस भावना को समर्पित करते हुए परमात्म शक्तियों से कर्म हुआ और कर्म का जो भी परिणाम अब आया वो ऊपर भेज दें, महिमा मिली ऊपर जाने दें। हो सकता है यह जब महिमा मिलती है तो हम बहुत खुशी से स्वीकार करके उसमें मस्त हो जाते हैं। कर्म करने के बाद ग्लानि मिली ऊपर जाने दो, लाभ हो गया बाबा को धन्यवाद दो, उसे भूलो नहीं, उसके आगे पहले रख दो, ये पहले तुम्हारा, तुम इसे स्वीकार करो, फिर उसको अपने लिए या अपने परिवार के लिए प्रयोग करो। हार हो गई तो भी उसको समर्पित कर दें। इस तरह कर्म का जो परिणाम हमें मिलता है उसको भी परमात्मा पर समर्पित करते चलना है। ये सभी तरह की समर्पणता, 9 तरह की समर्पणता मैंने आपके समक्ष रखी, ये बहुत सूक्ष्म भी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा का एक बहुत बहुत गुह्य महावाक्य अंत में आपको याद दिला दें। बाबा ने कहा, जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाओगे तो एक सेकंड में संपूर्णता आ जाएगी। समर्पणता ही संपूर्णता लाएगी। जिसे संपूर्णता की मंजिल की ओर चलना है, उसे समर्पणता के पथ पर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। कुछ भी मेरा नहीं, मेरेपन को, मैंपन को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया जाए, पूरा निमित्त भाव आ जाए, ऐसी फीलिंग्स होने लगे, हम नहीं चला रहे, शिव बाबा हमें चला रहा है, हम नहीं खा रहे हैं, शिव बाबा हमें खिला रहा है, हम कर्म नहीं कर रहे हैं, वही हमसे करा रहा है, बिल्कुल समर्पित सब कुछ तेरा, बस जैसे हम उसमें मगन हो जाएं, अपनत्व मिट जाए। जो भक्ति में लोगों ने कहा है, मैं रहे ही नहीं, तू ही तू रह जाए, ऐसी संपूर्ण समर्पणता की हम और हम चलेंगे तो इस जीवन में निरंतर भी हमें सुख मिलेगा और हम अपनी मंजिल को भी पा सकेंगे। ओम शांति।